ओम शांति।
हम सभी बाबा के पास क्यों आए हैं और बाबा ने हमें ये श्रेष्ठ जन्म क्यों दिया है? क्यों आए हैं हम बाबा के पास, बोलो। विक्रम विनाश करने, मिलन मनाने और होली बनने। और बहनें क्यों आई हैं? बहनें क्यों आई हैं बाबा के पास? मिलन मनाने, बस। और बाबा ने हमें ये जन्म क्यों दिया है? बाबा ने हमें ये जन्म सतयुग में ले जाने के लिए दिया, पवित्र बनाने के लिए दिया। और बाबा भगवान ने किसी को जन्म दिया हो, मनुष्यों के घर जन्म लेते हैं और इधर हम सब ने भगवान के घर जन्म लिया है। भगवान ने स्वयं हमारी पालना की है, उसकी छत्र छाया में हमारा जीवन चलता है। गीत हम सुन रहे थे, इस जीवन की यात्रा पर भगवान हमारा साथी बन गया है। ऐसा श्रेष्ठ जीवन हम सबको क्यों दिया? हम सब जानते हैं कि संगम युगीय जीवन 84 जन्मों में सर्वश्रेष्ठ है। आज तक लोग कहते आए 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, वो श्रेष्ठ है। अब हम जान सके 84 जन्मों के बाद जो असली मनुष्य जन्म मिलता है वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने जन्म दिया, उसने ही पालना की है, तो इसका लक्ष्य भी बहुत महान है। हम सभी बाबा के पास आए हैं अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाने, इतना महान बनाने के लिए कि बाबा हमारे द्वारा इस संसार का कल्याण कर सके। बाबा हमारे द्वारा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सके। हमें बाबा पालना दे रहा है इसलिए ताकि हम संसार की पालना कर सके। ऐसा लक्ष्य हम सभी को अपनी बुद्धि में रखना चाहिए। जितना श्रेष्ठ लक्ष्य होगा उतने ही हमारे कदम श्रेष्ठ गति से आगे बढ़ेंगे। मैं आपको इस सब लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कुछ छोटी छोटी और बहुत काम की बातें सुना देता हूँ, जिससे जीवन को बदलना सरल हो जाए। हम जीवन बदलने आए हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि माया को संपूर्ण रूप से समाप्त करने आए हैं। हमारे ऊपर जो माया है उसका राज भी समाप्त हो जाए और इस संसार से भी माया पूर्ण रूप से विदाई ले ले, ये हमारा लक्ष्य है। माया से युद्ध, उस माया से युद्ध जिस माया से चलते चलते सभी हार मान चुके, उस माया से युद्ध है हमारा जिसके आगे संसार के सभी महान पुरुषों ने समर्पित कर दिया और बाबा ने उसके आगे हम सबका सिर ऊंचा उठाया। तो अपने जीवन को बदलने के लिए सबसे पहली आवश्यकता मनुष्य को है। मैं अगर ये प्रश्न पूछूं तो आप बहुत सारे उत्तर इसके दे सकते हैं, परंतु एक चीज पर सभी को अपने जीवन में ध्यान रखना है कि जीवन परिवर्तन का आधार है संकल्प परिवर्तन। हम अपने विचारों को और संकल्पों को बदलना सीखें। हमें ये मालूम हो कि हमारे मन में उठने वाला कौन सा संकल्प गलत है और उसके स्थान पर कौन सा संकल्प उठना चाहिए। अगर हम अपने पुरुषार्थ का एक ऐसा तरीका अपना लें कुछ दिन के लिए कि हम क्या सोचें और क्या न सोचें, क्या सोचते हैं उसमें क्या गलती हो रही है और उसकी जगह पर हमें क्या सोचना चाहिए, बस इससे ही जीवन बदल जाता है। एक मनुष्य उदाहरण है, एक मनुष्य ये सोच सोच कर बहुत भारी होता है और परेशान होता है कि मुझे ये काम करने हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, बच्चे बड़े हो गए, इनकी शादी करनी है, बिजनेस ये है वो है, और बहुत सारा बोझ उठाए मनुष्य इस संसार में विचरण करता है। सोचता है मेरी ये जिम्मेदारी और जीवन भारी होता जाता है। उसी के स्थान पर अगर बाबा के बच्चे ये सोचने लगे क्या कि मैं तो निमित्त हूं और जिम्मेदार तो बाबा है, तो ये सारा बोझ समाप्त हो जाए। जीवन का सुख पाना या जीवन को दुखों की ओर ढकेल देना, जीवन में संपूर्ण शांति ले आना या उसे अशांति के मार्ग पे चला देना, जीवन को सुखों की खान बना लेना या उलझनों से भर लेना, ये सब संकल्प पर आधारित है। इसलिए संकल्पों को बदलते चलें। हम ज्ञान सरोवर में रोज किचन की छत पे खड़े होकर सोचता हूं कि अगर कोई सोचे, हम में से कोई मनुष्य सोचे कि मैं इस कार्य को कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कर लें, कोई काम करने वाला, कोई जिम्मेदार व्यक्ति ज्ञान सरोवर में ये सोचने लगे कि मैं ये कार्य कर रहा हूं या करा रहा हूं, तो क्या ये सोचना यथार्थ होगा? दिखाई देता है, साफ साफ दिखता है, अनुभव तो है ही, लेकिन साफ साफ दिखता है कि ये सब कार्य ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा चल रहा है। आप सोचेंगे कि ये तो ईश्वरीय कार्य है ही ज्ञान सरोवर का और मधुबन का और सेंटर्स का, लेकिन आपका जो लौकिक घर है उसके लिए बाबा ने एक बहुत सहज और सूक्ष्म बात बता दी। अगर कोई बच्चा अपने लौकिक घर को और परिवार को बाबा का समझ ले, तो उसके परिवार को चलाने की जिम्मेदारी भी बाबा की हो जाती है। तो केवल अपने संकल्पों को बदलते चलें। संकल्प बदल दिए तो जीवन बदल जाएगा। संकल्प बदलने के लिए बाबा ने हम सबको एक बहुत सरल विधि बताई है। जो पहली बार मधुवन में आए हैं, जो ज्ञान में नए हैं, उनको शायद उसका इतना एहसास न हो, परंतु ये बात हम सबको जाननी चाहिए। नए पुराने सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बाबा ने हम सभी को हमारे स्वमान की याद दिलाई है, अर्थात हमारे सत्य स्वरूप की याद दिलाई है। सत्य स्वरूप केवल इतना नहीं कि हम आत्माएं हैं, ये तो सन्यासी भी, शास्त्र भी हमें याद दिलाते आए थे हजारों साल से कि तुम आत्मा हो। बाबा ने आकर हम सभी को हमारे सत्य स्वरूप के बारे में और बहुत चीजें याद दिलाई। जो उस चीज को जितना समझ सके, उसका जीवन परिवर्तन उतना ही सरल हो जाता है। आप सोच लें, बाबा ने हमारे बारे में हमें क्या क्या याद दिलाया। मुख्य रूप से हमारे पास कितनी शक्तियां हैं इस समय, इस समय हमारे पास कौन कौन से वरदान हैं, इस समय ईश्वरीय शक्तियां किस तरह हमारे साथ चल रही हैं, इस समय हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी अपनी सामर्थ्य की, हमारे अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों की बाबा ने हमें याद दिलाई। आज तक मनोवैज्ञानिक कहते आए कि मनुष्य के अंदर, उसके मन में बहुत सारी शक्तियां छुपी हुई हैं, उसको जागृत करना चाहिए। और चिंतकों ने विचार दिए कि इसी तरह अपने अंदर सोई हुई शक्तियों को जागृत करो। जो सुसुप्त शक्तियां हैं, जो सुसुप्त योग्यताएं हैं, जो हमारे अंदर छुपी हुई मान्यताएं हैं, उनको जागृत करो। और सभी ने एकमत से स्वीकार किया कि एकाग्रता के द्वारा हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियां जागृत हो जाती हैं, इमर्ज हो जाती हैं। परंतु किसी को भी ये पता नहीं था, न दुनिया में है, कि एकाग्रता कहां करनी चाहिए। और एकाग्रता के सब्जेक्ट को लेकर विद्वानों ने और साधकों ने और मनोवैज्ञानिकों ने एक ही बात कही कि अपने संकल्पों को शांत कर दो, शून्य में चले जाओ, जीरो बन जाओ, डेड हो जाओ, मन को बिल्कुल डेड कर दो। जब मन डेड कर दिया तो सोई हुई शक्तियां भी डेड होने लगी, जागृत नहीं हुई। बाबा ने हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाया है, ये कहकर एक छोटी सी बात बाबा ने आते ही बहनों को सामने रखते हुए कह दी, कही हम सबको। क्या कहा? तुम शिव शक्तियां हो। सबने ये बात सुन ली और बड़ी सरल लगी है, कुछ इसमें गहराई जैसी बात नजर नहीं आई। परंतु अगर इस बात पर विचार किया जाए, भगवान ने कहा तुम शिव शक्तियां हो, और कई बहनें शिव शक्तियां बन गई, ये दिखाई दिया। क्यों बन गई? क्योंकि उनके अंदर जो छुपी हुई शक्तियां थी वो काम करने लगी। और बात केवल इस पर निर्भर करती है कि हम कितना स्मृतियों में रहते हैं अपने स्वमान की। बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें स्वमान के संबंध में, या ऐसा कहें हमारे लिए वरदान बनाकर हम सबको कही हैं। आप एक ही चीज का अभ्यास करके देख लें, यहां रहते हुए ज्ञान सरोवर में एक संकल्प का अभ्यास करके देख लें। बाबा हम सभी को अनेक बार कहकर आए हैं, तुम इस धरती पर महान आत्माएं हो। आप इस बात को दिन में कई बार अपने अंदर चलाकर देखो, महसूस करो हम महान आत्माएं हैं, और देखो क्या होता है। इस एक संकल्प का प्रयोग सभी करके देखें कि ये क्या क्या करता है। हम महान आत्माएं हैं, ये सोचने मात्र से क्या क्या होने लगता है। और अगर इसको हम अपने चित्त में समाने लगे, अगर हम इसको अपने चिंतन में ले आए तो क्या होता है, और अगर हम इसको अपनी गहरी फीलिंग्स में लाने लगे तो क्या होता है, और थोड़े दिन में दिखाई देने लगेगा कि हमारे विचार और संस्कार, कर्म, संकल्प महान होने लगे। हमें बार बार संकल्प आएगा कि तुम महान हो, फिर तुम ये क्या सोच रहे हो, महान आत्मा ऐसा नहीं सोचा करते। हमें बार बार प्रेरणा मिलेगी, तुम महान हो, तुम ये क्या कर रहे हो, महान आत्माओं को ये कर्म शोभा नहीं देते। हमें बार बार प्रेरणा मिलेगी, तुम इस संसार में सबसे महान हो, तुम किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, तुम दाता हो, तुम मांग नहीं सकते, तुम्हें सम्मान भी मांगना नहीं है, महान आत्माओं के पीछे तो सम्मान परछाई की तरह चलता है, ये सब स्वतः ही हो जाएगा। तो जीवन की सभी समस्याओं को हल करने का आधार ये स्वमान है, हमारी स्मृतियां हैं। क्योंकि इस संसार में बहुत सारे लोग एक दो चीजों से बहुत परेशान हैं। बाबा ने अपनी पहली अव्यक्त मुरली में भी उस पर हम सभी का अटेंशन खिंचवाया। व्यर्थ संकल्पों के दो कारण हैं, याद है कौन से, अभिमान और अपमान। बहुत सारे लोग अभिमानवश परेशान हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा अपमान होता है इसलिए परेशान हैं। और बाबा ने इन दोनों को जोड़ा हुआ है बहुत सूक्ष्म रीति से कि जिस आत्मा के अंदर ज्यादा अभिमान होगा उसे कदम कदम पर अपमान की महसूसता होगी। जो स्वमान में स्थित हैं उनका अभिमान नष्ट होता जाता है। कईयों को ये बात सुन के प्रश्न उठता है कि हम महान हैं, ये सोचना कहीं अभिमान तो नहीं है, ये सोचना कहीं हमारे अभिमान को तो बढ़ावा नहीं देगा। ये बात कहने की नहीं है मुख से, क्योंकि महान आत्माएं अपने मुख से नहीं कहा करते कि हम महान हैं, इसको अपने चित्त में समाने की आवश्यकता है। तो ये गति है, सूक्ष्म गति है, जितना श्रेष्ठ स्वमान उतना ही अभिमान नष्ट होता जाएगा। अभिमान को नष्ट करने की दवाई श्रेष्ठ स्वमान ही है, और जितना अभिमान नष्ट होगा अपमान की फीलिंग समाप्त होती जाएगी और हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सभी यहां रहते हुए ही इस चिंतन को बढ़ाएं, हम महान आत्माएं हैं। हम सभी को माया से युद्ध करने के लिए और जीवन में आने वाली विघ्न और समस्याओं से लड़ने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, किस चीज की जरूरत पड़ती है, बोलो नहीं। और आप जरा सोच के देखो, आपके पास बहुत समस्याएं हो, विघ्न हो, आपको किस चीज की जरूरत है, और सोचो, बुद्धि की तो आवश्यकता है ही, और बाबा ने बहुत अच्छी बुद्धि सबको दे दी है। एक और चीज, इन सब से जुड़ी हुई एक चीज, इन सब के बीच में सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, हम सबको जरूरत है इस संसार में सेफ रहने के लिए, इस संसार में रहते हुए निर्लिप्त रहने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि के साथ साथ शक्तियों की। शक्तियां हम सभी की साथी हैं वर्तमान में, और बाबा ने हम सभी को एक बात बार बार याद दिलाई है, और जो आत्माओं को याद नहीं रहती, और वो याद दिलाई है कि जब से तुम मेरे बच्चे बने हो, जब से तुमने मन से स्वीकार किया कि बाबा हम तुम्हारे हैं, उसी क्षण बाबा ने तुम्हें सारी शक्तियां दे दी हैं वरदान में। जैसे हम सभी भक्ति के कुछ उदाहरणों से जानते हैं, अर्जुन ने तपस्या की, शिव की आराधना की, शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और मां पूछा क्या चाहिए और उसको अपना शस्त्र दे दिया और कहा जब तुम चाहो इसका यूज करना। और कहीं कहीं दिखाया कि विष्णु ने, शंकर ने अपने शस्त्र लेकर उन शस्त्र को चलाने की विधि भी बताई, एक मंत्र भी दिया, इस मंत्र का उच्चारण करते ही ये शस्त्र तुम्हारे पास आ जाएगा और इसका तुम प्रयोग कर सकते हो। ठीक ऐसे ही भगवान जब हम पर राजी हुआ है, हुआ है सब पर राजी, सभी को लगता है कि भगवान हम पर राजी हुआ है, राजी होते ही उसने हम सभी को 8 दिव्य शस्त्र दे दिए हैं 8 शक्तियों के रूप में और कहा है ये शक्तियां सदा तुम्हारे साथ हैं, इनका प्रयोग कर लेना जब तुम्हें आवश्यकता हो। इस बात पर हम सभी को संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। हम अपने को बार बार समझा दें कि हे आत्मा तुम्हारे पास 8 शक्तियां हैं, सर्वश्रेष्ठ दिव्य शस्त्रों के तुम मालिक हो। याद रखो कोई बात, कोई घटना, कोई माया तुम्हें तुम्हारे शस्त्रों की याद भुला न दे। बाबा उदाहरण दिया करते हैं, जैसे किसी के पास बंदूक हो और वो पहरा दे रहा हो बार और उसे नींद आ गई हो, हल्की सी नींद, और चोर आ गए हो तो उसे ये भूल जाएगा कि बंदूक तुम्हारे पास है, वो भागने लगेगा चोरों से बचने के लिए। ऐसा बहुत जगह होता है जब मनुष्य अपने शस्त्रों को भूल जाता है, शस्त्र भूल जाए या शस्त्र चलाने की विद्या भूल जाए। जैसे कर्ण के लिए दिखाया ना अंत में कि वो अपने दिव्य अस्त्र चलाओ, ब्रह्म अस्त्र चलाने की, और जो उसको एक विशेष शस्त्र मिला था परशुराम से उसको चलाने की विद्या भूल गया श्राप के कारण। तो हमें भी ये माया, विघ्न, समस्याएं और हमारे अपने छोटे विचार ये भुला देते हैं कि तुम्हारे पास दिव्य शस्त्र हैं। इसलिए हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस स्मृति की कि हम शिव शक्तियां हैं और दूसरे शब्दों में मास्टर ऑलमाइटी हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, हम सर्व शक्तियों के मालिक। और हम सभी को एक नशा रहना चाहिए, सभी इस बात को अपने अंदर समा लें। जो बात अब मैं बता रहा हूं बाबा की बताई हुई है, बहुत सुंदर। जिसको अपने जीवन में निर्भय बनना है, वैसे तो बाबा के बच्चे निर्भय हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी हर मनुष्य के अंदर एक विशेष तरह का भय छुपा हुआ रह जाता है। एक बहुत बहादुर व्यक्ति जो बाहरी दृष्टि से बहुत शक्तिशाली हो, अगर उसको आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो उसके अंदर भी एक विशेष तरह का भय छुपा हुआ रहता है। अपने भय को समाप्त करने के लिए ये एक बात याद करनी है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और मेरा बाप सर्वशक्तिवान है और हम दोनों सर्व शक्तियों के वाइब्रेशंस से जुड़े हुए हैं। और ये बाबा के महावाक्य हैं कि जहां मास्टर सर्वशक्तिवान और सर्वशक्तिवान कंबाइंड हों, एक साथ हों, ऐसे कंबाइंड स्वरूप के सामने संसार की सभी शक्तियां हार मान जाती हैं। मैं आपको इसके लिए महाभारत का एक उदाहरण दे देता हूं जो मैंने क्लासेज में बहुत बार दिया है और उसको याद करने से ये बात याद आ जाती है। आपको याद हो महाभारत में एक वृतांत है, महाभारत युद्ध से पहले धृतराष्ट्र संजय को दूत बनाकर भेजता है पांडवों के पास कुछ समझौता वार्ता के लिए, और संजय धृतराष्ट्र का और कौरवों का संदेश लेकर पांडवों के शिविर में जाता है और बताता है, और संदेश तो वही था कि कुछ मिलने वाला नहीं है इसलिए समझौता कर लो, झुक जाओ। तो अर्जुन उसको लास्ट में एक संदेश देता है कि कौरवों को जाकर धृतराष्ट्र को, कर्ण को, भीष्म पितामह को ये कह देना कि जहां अर्जुन और श्री कृष्ण एक साथ हैं, जहां अर्जुन और श्री कृष्ण का कंबाइंड स्वरूप है, वहां चाहे इंद्र भी युद्ध करने आ जाए हमें कोई परास्त नहीं कर सकेगा। और ये हम सब की बात है। कि जहां हम और सर्वशक्तिवान एक साथ हों, वहां संसार की सारी शक्तियां मिलकर भी हमें हिला नहीं सकती, ऐसा हमें अपनी शक्तियों में विश्वास होना चाहिए। यहां बहुत बड़ी बात है आत्मविश्वास की, इस स्वरूप के अनुभव की। हम शिव शक्तियां और हमारे साथ, हमारे ऊपर, हमारी छत्र छाया सर्वशक्तिवान, उसकी आठों शक्तियों की किरणें निरंतर हमसे जुड़ी हुई हैं। ये हमारा कंबाइंड स्वरूप इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली है। जहां ये स्वरूप है, उसके सामने चाहे भूत प्रेतों की शक्तियां हो, चाहे तांत्रिकों की शक्तियां हो, चाहे संसार के किसी बड़े से बड़े कलयुगी योगी की शक्तियां हो, चाहे मिलिट्री पावर्स हो और चाहे माया की शक्तियां हो, इस स्वरूप के सामने सभी हार मान जाएंगी। ये बहुत लोगों के हम में से अनुभव भी हैं और ये संपूर्ण सत्य है। इसलिए जब जब कहीं भय हो, जब जब कहीं शक्तियों की आवश्यकता पड़ जाए, अपने इस स्वरूप को इमर्ज कर लिया जाए। याद रहेगा ना, हम मास्टर सर्वशक्तिवान और सर्वशक्तिवान हमारा बाप। इस स्मृति से हमारे अंदर छुपी हुई संपूर्ण शक्तियां जागृत होकर कार्य करने लगेंगी और हमारे संकल्पों में सामर्थ आ जाएगी। अगली बात जो बहुत आवश्यक है हर मनुष्य के जीवन के लिए, बाबा के बच्चे बनने के बाद भी आत्माएं समस्याओं और उलझनों में उलझी रह जाती हैं। ये तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको दो पांच मिनट में तो इसको हल नहीं किया जा सकता, पर मैं कुछ थोड़ी थोड़ी बातें आपके सामने रख देता हूं जो आपको जीवन भर काम आ सकती हैं। बाबा के द्वारा बताई हुई ऐसी गूढ़ रहस्य लिए हुए कुछ सिद्धांत की बातें हैं। जीवन में विघ्न और समस्याएं क्यों हैं, सोचने की बात है जरा। अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं तो वो कह देंगे कि फलाने फलाने ग्रह का तुम पे प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो कह देंगे तुम्हारे शरीर में बीमारियों के ये कारण हैं। अगर आप और किसी तरह देखें तो आपको दिखाई देगा हमारे जीवन में समस्या और परिस्थितियों का निर्माण करने वाले फलाने फलाने मनुष्य हैं। फलाना मनुष्य हमारा विरोध करता है, फलाना मनुष्य हमें तंग करता है, और इस तरह हमारे जीवन में विघ्न और परिस्थितियां आती हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले विघ्न और समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण हमारे द्वारा किए गए जन्म जन्म के पाप कर्म हैं। पाप कर्मों के कारण मनुष्य के संकल्प कमजोर पड़ गए हैं, ढीले पड़ गए हैं। और बाबा ने ये एक बहुत ही सुंदर बात हम सबको बताई है जो रियलाइज करने की है कि मनुष्य के कमजोर संकल्प ही उसकी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं। एक व्यक्ति जो बहुत परिस्थितियों का सामना करता है, उसका कारण उसके मन में उठने वाले निगेटिव विचार, कमजोर संकल्प, व्यर्थ भावनाएं हैं। हम इस संसार को सारा दिन देखते हैं, हमारे पास भी एक संसार रहता है। रोज कोई व्यक्ति बहुत सुखी है, कोई व्यक्ति परेशान है। जो व्यक्ति परेशान है, हम देखते हैं ये क्यों परेशान है, तो पता चलता है, दिखाई देता है कि इस व्यक्ति की परेशानी का कारण ये व्यक्ति अपने जीवन का सुख नहीं पा सका है। इस व्यक्ति के 50 साल उलझनों में बीत गए हैं। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव चिड़चिड़ा है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर उसे ये पता लग जाए कि तुम्हारे चिड़चिड़े स्वभाव के कारण ही तुम्हारा जीवन समस्याओं से घिरा रहता है, और वो ये जान ले कि इस चिड़चिड़ेपन को कैसे समाप्त करना है, तो जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाएं। इसलिए बाबा ने हम सभी को एक बहुत अच्छी बात याद दिलाई है, जो मैं भी अपने को रोज याद दिलाता हूं कि तुम्हारे श्रेष्ठ संकल्पों में बहुत बड़ी शक्ति है। संकल्पों के वाइब्रेशंस कमाल करते हैं, और उसमें भी जो पवित्र आत्माएं हैं, जो योग अभ्यास करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को शुद्ध किया है, जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्मों का खाता खोला है, उनका एक एक श्रेष्ठ संकल्प चमत्कारिक कार्य करने में समर्थ है। इसलिए संकल्प पॉजिटिव कर दें, संकल्पों को श्रेष्ठ कर दे, समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। आप इसका प्रयोग करके देखें। उलझन है, समस्याएं और विघ्न हैं, उसका निर्माण मनुष्य स्वयं कर रहा है अपने उल्टे संकल्पों के द्वारा। इस बहुत बड़े रहस्य को सभी को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। बार बार अपने से पूछ ले आप, अपनी समस्याओं और विघ्नों का विश्लेषण करके देख लें कि जीवन की सभी समस्याएं कमजोर संकल्पों के कारण हैं। उन्हें समर्थ बनाओ, संकल्प चेंज करो, संसार चेंज हो जाएगा। पहले अपना संसार चेंज हो जाएगा ना, वहां सब कुछ सफल होता रहे ऐसा करना ये सभी के लिए आवश्यक है। क्योंकि इस संसार में साधनाओं के मार्ग में ऐसा हो रहा है कि मनुष्य का कर्म क्षेत्र उसकी साधनाओं में सबसे ज्यादा बाधक बना हुआ है। हमारा जो कर्म का फील्ड है, हम जो रात दिन कर्म करते हैं, चाहे कोई घर में कर्म करता है, चाहे ऑफिस और बिजनेस में दुकान पर, उसका जो अपना फील्ड है जहां वो कर्म कर रहा है, जिन मनुष्यों के साथ कर्म कर रहा है, उनसे होने वाला व्यवहार, संबंध और संपर्क, ये मनुष्य के जीवन में अनेक तरह की उलझन पैदा कर रहे हैं। इन सभी को समाप्त किया जा सकता है अपने श्रेष्ठ स्वमान के द्वारा। अगर आप अपने घर के बड़े हैं, बड़े होने के नाते कई लोग अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा महसूस करते हैं और भारी हो जाते हैं, परेशान रहने लगते हैं, तो आपको कुछ अच्छी स्मृतियों का अभ्यास करना है। मैं आपको कुछ 3-4 स्मृतियां सुना देता हूं जिनके अभ्यास से आप अपने जीवन को खेल बना सकते हैं। मैं इस क्लास को थोड़े 15 मिनट और में सार में ले आता हूं। पहला संकल्प, कोई भी कर्म करने से पहले, भाइयों के लिए विशेष है पर बहनें भी जो कर्म क्षेत्र पर हैं वो इसका अभ्यास कर सकते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले बाबा को याद करते हुए इस वरदान को याद करो, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसका चमत्कार देखो, असफलता सफलता में बदलने लगेगी। जब भी आप कुछ बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, इस वरदान को अवश्य याद करो, बाबा को याद करके चलो और इस वरदान को याद करके चलो, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हर कदम पर सफलता का अनुभव होगा। दूसरी चीज, बहनों के लिए विशेष, अपने घर में शांति स्थापित करने के लिए और अपने घर के माहौल को खुशहाल बनाने के लिए एक बहुत सुंदर स्मृति बाबा ने दी है, मैं इस घर में इष्ट देवी हूं। जरा इस पर सभी माताएं बहनें चिंतन करें, और जो टीचर बहनें बैठी हैं वो इस पर चिंतन करके माताओं को और भाइयों को सिखाएं कि घर में मैं इष्ट देवी हूं, इष्ट देवता हूं, इस स्मृति से क्या प्रभाव होगा। ऐसा मान लें कि हमारा घर मंदिर है, मंदिर, और हम इसमें चेतन मूर्तियां हैं। तो मूर्तियों का काम क्या होता है ये आप सब जानते हैं, मूर्तियों का दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, उनके दर्शन से ही बहुत कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अगर ये नशा हो जाए कि हम इष्ट देवी हैं, तो ये भी याद रहेगा कि भक्त लोग हमारा दर्शन करने आएंगे, और अगर इष्ट देवी गुस्सा करेगी तो भक्तों का क्या होगा। अगर इष्ट देवी चिड़चिड़ी होगी, अगर इष्ट देवी जोर से बोल रही होगी, तो भक्त सब डर के भाग जाएंगे। हम इष्ट देवी हैं और ये घर मंदिर है, हमारा कार्य है जो भी इस घर में कदम रखे उसे शांति का अनुभव हो। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप रोज सवेरे उठकर सोते हुए और बीच में कभी कभी मैं इष्ट देवी हूं, इस स्मृति को गहराई से अपने अंदर समाओ कि मैं वही हूं जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है, मैं वही हूं जिसके द्वारा भक्तों को वरदान मिल रहे हैं, मैं वही हूं जिसके दर्शनों से ही मनुष्यों के कार्य सफल हो जाते हैं। ऐसी बातें अपने चिंतन में लाओ तो इस स्मृति का प्रभाव घर में बहुत ज्यादा पड़ेगा और घर का माहौल तेजी से बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि घर में जो भी बड़े हैं, माँ बाप या और कोई गार्जियन जो बड़े हैं घर में, उनका ये कर्तव्य हो जाता है कि घर का माहौल भारी न हो जाए। और कईयों की आदत ऐसी होती है, आप सब तो गृहस्थ में रहते हैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं, छोटे बच्चे डरे डरे रहते हैं कि पापा आएंगे, बहुत डरे रहते हैं कि आएंगे, आगे आप जानते ही हैं, डरे रहते हैं ना, खुशी नहीं रहती बहुत बच्चों को कि पापा आ रहे हैं, खुशी नहीं होती, इसकी भय रहता है। और आज मनुष्य ये भूलता गया है कि भय का प्रभाव नई जनरेशन पर क्या पड़ता है। भय का माहौल उनके बौद्धिक विकास को रोक देता है, भय का माहौल उन्हें गलत मार्ग पर ले चलता है। मनुष्य सोचता है कि बच्चों को डरा कर रखेंगे तो वो गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे, पर सत्यता ये है, डरा कर रखना अलग चीज, लेकिन भय का माहौल पैदा कर देने से बच्चे निश्चित रूप से गलत राह पकड़ लेंगे। इसलिए जो माँ बाप हैं उनका ये कर्तव्य है कि अपने घरों का माहौल सुखमय, खुशहाल, सरल चित्त बनाएं और अपने लिए बच्चों के मन में सम्मान पैदा हो जाए ऐसे कार्य करें। आज शिकायत है, घर घर में शिकायत है कि बच्चे माँ बाप को सम्मान नहीं देते। जहां स्कूल कॉलेजों में जाओ शिकायत है, स्टूडेंट्स टीचर्स का सम्मान नहीं करते। मैं तो खुले में पूछता हूँ टीचर्स और लेक्चरर से कि ये सम्मान किसने खोया है, बच्चों को किसने सिखाया कि सम्मान न दो, बच्चे गर्भ से सीख के आए थे क्या, किसने बता दिया उनके को अपने माँ बाप का और टीचर का सम्मान नहीं करना। रोज तो पढ़ाया जाता है कि बड़ों का सम्मान करो, अच्छी तरह पढ़ाया जाता है बचपन से ही, और बच्चे पढ़ते हैं कि बड़ों का सम्मान न करो, ये उल्टा कैसे हो गया है, कैसे हो गया ये उल्टा, क्योंकि बड़ों ने अपने सम्मान को स्वयं खो दिया है। सम्मान मांग कर आज मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, और मांगने से सम्मान नहीं मिलता, अपमान मिलता है। जिसको सम्मान चाहिए उन्हें चाहिए कि वो सम्मान के अधिकारी बने, और सम्मान के अधिकारी मनुष्य बनता है अपने अच्छे कर्मों से, अच्छे व्यवहार से, और बाबा के शब्दों में स्वमान में रहने से। इसलिए अपने अपने घर को श्रेष्ठ बनाने से योग भी अच्छा लगेगा, और घर के सभी लोग, परिवार, मित्र और समाज के सभी लोग खींच खींच कर बाबा के पास आ जाएंगे। आप उन्हें ज्ञान सुनाओ तो ज्ञान का विरोध करेंगे, और जीवन दिखाओ तो ज्ञान का सम्मान करेंगे। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जो भी ज्ञान में आ गए उनमें दूसरों को अच्छा परिवर्तन जरूर दिखाई दे। और अच्छा परिवर्तन सबसे पहला होता है कौन सा, जो दिखाई देता है लोगों को, बोल का परिवर्तन। बोल, बोलने में मिठास भी हो जाए। अगर आप पहले बहुत ज्यादा बोलते थे तो वो कम हो जाए, अगर आपका बोल बड़ा दुखदाई था तो वो सुखदाई हो जाए, आपका बोल दूसरों को आराम देने वाला हो जाए, चैनदायक बन जाए। ऐसा बोल का परिवर्तन सेवाओं की वृद्धि का सबसे पहला कारण बनता है, पहला कारण। और दूसरा परिवर्तन होना चाहिए जो बाबा ने काम दिया था पिछले साल, क्रोध का फोर्स ढीला पड़ जाए। ठीक है पूरा न भी निकले, ये तो सब जानते हैं, पूरा निकलने के लिए तो अच्छी साधना चाहिए, परंतु उसका फोर्स अवश्य कम हो जाए। क्रोध का फोर्स खत्म होता देख लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि इनको इस तरह का श्रेष्ठ जीवन किसने बनाने की प्रेरणा दी है, और लोग ज्ञान की ओर आकर्षित होते हैं। एक इसी से जुड़ी हुई बात कि जब विघ्न और परिस्थितियां हमारे जीवन को घेरने लगे, और हम जानते हैं कि आगे चलकर ये सारा संसार विघ्न और समस्याओं से घिरता चला जाएगा, क्योंकि सभी को अपने अपने जन्म जन्म के हिसाब किताब भी चुकतू करने होंगे, और घर जाने से पहले जिससे जो कर्ज लिया है किसी भी जन्म में वो उतारना पड़ेगा। इसलिए हर मनुष्य पाएगा कि उसका जीवन विघ्न और समस्या से घिरा हुआ है, और दूसरी चीज हर मनुष्य पाएगा कि वो इस संसार में अकेला है। ये दो फीलिंग्स हर मनुष्य के पास होंगी। और जो बाबा के बन गए, अगर उन्होंने बाबा को साथी बनाया है तो उन्हें लगेगा कि हम संसार में अकेले नहीं हैं, भगवान जिसके साथ है सारा संसार उसके साथ है, बीज जिसके साथ है सारा कल्प वृक्ष उसके साथ है, और जिसने लंबा समय अपने जीवन को विघ्नों से मुक्त बनाकर रखा है उसको अंत में विघ्नों की महसूसता नहीं होगी। और विघ्नों से मुक्त बनाना जीवन ये अपने हाथ है। मैंने आपको छोटी छोटी बात बताई, और इस छोटी बात में एक और छोटी बात आप जोड़ लें, अपने संकल्पों को सरल कर दो, समस्याएं स्वतः ही सरल हो जाएंगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा सिद्धांत है इस रचना का, इस संसार की क्रिएशन का। संकल्पों को हल्का कर दो, इजी बना दो, समस्याएं और परिस्थितियां इजी हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी, हल्की होके समाप्त हो जाएंगी। संकल्प जहां भारी हैं वहां परिस्थितियां भारी हैं। इसलिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग है हर एक को जो स्वयं सीखनी है कि हम अपने को सरल चित्त कैसे करें, इजी कैसे बनाएं, बिल्कुल हल्का कैसे रखें। और इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है ज्यादा सोचने की आदत को ब्रेक लगाया जाए। इस संसार में मैंने विदेशियों में तो बहुत ज्यादा देखा, विदेशियों में तो मैं कहूंगा कम से कम 90% मनुष्य बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसलिए वहां ये वर्ड बहुत ज्यादा प्रचलित है, सेंसिटिव। भाई ये व्यक्ति बहुत सेंसिटिव है, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता, बड़ा नाजुक है। हम सब अपनी यहाँ भारत में भाषा यूज करते हैं कि इसे बहुत फीलिंग आती है, इसलिए इसे कुछ नहीं कहो। तो बहुत ज्यादा सोचने की आदत आत्मा को कमजोर करती है, समस्याओं को और विघ्नों को बढ़ा देती है। और अगर आपके पास जीवन में विघ्न आ ही रहे हो तो उसको नष्ट करने की विधि है सवेरे उठकर अच्छा योग लगाना, और इस स्मृति को जरा और शक्तिशाली रूप से इमर्ज कर देना कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, और आप पाएंगे विघ्नों का फोर्स खत्म होने लगेगा। इस तरह आप देख सकते हैं बाबा ने जो कुछ हमें ज्ञान दिया है वो संपूर्ण ज्ञान है। और मैं ऐसा देखता हूं इस ज्ञान को कि अगर इस संसार की सभी विद्याएं, जितनी तरह की भी एजुकेशन, जितने भी सब्जेक्ट इस संसार में हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, वो सब बाबा के ज्ञान में समाई हुई हैं। सभी विद्याओं का सार बाबा का ज्ञान है। ऐसे भी कह सकते हैं कि सारी विद्याएं ज्ञान से ही निकली हैं। ज्ञान है बीज और संसार की सारी विद्याएं वृक्ष है। इसलिए हरेक इस ज्ञान की बहुत गहराई से स्टडी करे। हमारे पास मुरलियां साकार और अव्यक्त, असीम ज्ञान का भंडार है, बहुत गहरी साइकोलॉजी मनोविज्ञान, बहुत गहरा समाजशास्त्र, बहुत सारी पॉलिटिकल नॉलेज, बहुत सारा गहन विज्ञान इन मुरलियों में छुपा हुआ है। इस रचना के बड़े बड़े रहस्य जो फिलोसोफर्स और चिंतक हजारों साल से जान नहीं पाए वो बाबा के एक एक महावाक्य में छुपे हुए हैं। उनको आप स्टडी करेंगे, उनकी गहराई में जाएंगे तो ज्ञान की गहराई आत्मा को बल देती है। ज्ञान भी एक बल है बहुत बड़ा, जैसे योग और स्वमान और स्मृतियां बल हैं, ज्ञान मनुष्य के लिए बहुत बड़ी चीज है। ऐसा भी कह सकते हैं सब कुछ है, क्योंकि योग भी ज्ञान के आधार पर ही लगता है। तो मुरलियों का बहुत अच्छी तरह अध्ययन करें, और साथ साथ मैं अब जोर दूं, बाबा से मिलने के लिए सभी आए हैं तो बाबा से मिलने के दिन तो बिल्कुल समीप आ गए हैं, परसों है। सभी उस दिन विशेष रूप से सवेरे से ही अधिक से अधिक साइलेंस में रहने का लक्ष्य बनाएंगे। भोजन हल्का, साइलेंस और सवेरे से ही अच्छे चिंतन में रहेंगे। सवेरे से ही जैसे बाबा से मिलन मनाने लगेंगे, बुद्धि योग के द्वारा बाबा से बात करने लगेंगे, अपने कुछ संकल्प बाबा को देने लगेंगे, तो बाबा से मिलन का सुख इस बात पर निर्भर करेगा कि सवेरे से किसने अपनी स्थिति को कितना अच्छा बनाया है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, जीवन परिवर्तन संकल्प परिवर्तन है। संकल्प बदल दें, जीवन बदल जाता है। संकल्पों को श्रेष्ठ करने से जीवन महान बन जाता है। संकल्प को शक्तिशाली करने से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है और संकल्पों को सरल कर देने से विघ्न और समस्याएं सरल हो जाती हैं। तो इस तरह सभी ज्ञान और योग के द्वारा अपने इस जीवन को महान बनाते चलें और अभी से ऐसे अच्छे संकल्प कर लें। और मैं आप सभी को होमवर्क दे देता हूं कल के लिए कि कल आप सभी जो मैंने पहली बात कही थी, दिन में कई बार यहां क्लास में बैठे हुए सवेरे उठते ही ये याद करेंगे कि मैं इस धरती पर एक महान आत्मा हूं, और इसको अपने गहन चिंतन में लाएं और आंख खुलते ही याद करें कि इस संगम युग पर भगवान हमारे लिए है। ये नशा सभी को, संगम युग पर विशेष रूप से भगवान हमारे लिए है। मैं ये बात पिछली बार की एक मुरली का महावाक सुनाकर आपको सुना दूं, तो बाबा ने तलहटी में मुरली चलाते हुए कहा कि तुम सब बच्चों को नशा होना चाहिए कि हमें सुलाता भी भगवान है और उठाता भी भगवान है। तो बाबा ने कहा, अगर मनुष्यों को ये कहो कि हमें उठाता भी भगवान है, तो मनुष्य कहेंगे कि भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या, और कोई काम नहीं उसको जो इन्हें उठाने आता है रोज सवेरे सवेरे। तो बाबा ने कहा कि उन्हें कहो नशे से कि इस समय तो भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। आप चिंतन कर लें कि भगवान हमारे लिए खाली बैठा हो तो हमें क्या क्या फायदा उठा लेना चाहिए। लौकिक में आप जानते हैं, बाजार में सेल भी लग जाए कि सस्ते भाव में चीजें मिल रही हैं, तो हर मनुष्य सोचता है कि दो चार साल का माल खरीद के रख लो। बिजनेस चल रहा हो, सीजन आ गया हो, तो रात दिन जाग कर मेहनत कर लेते हैं कि मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है, आ जाओ। तो आप सोच लें कि क्या करना चाहिए एक बुद्धिमान मनुष्य को। तो भगवान हमारे लिए है, सवेरे उठते ही ये याद करेंगे और एक दृश्य देखेंगे ऊपर को देखते हुए कि शिव बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर भी पड़ रही हैं। इस तरह कल सवेरे सभी आनंद लेंगे इन तीन बातों के आधार पर।
ओम शांति।